सफा नंबर 258। अगरचे वो फासले दराज पर है, जब दिल एक दूसरे के करीब हो तो फासला कुछ मानी नहीं रखता। एम्मा वैगेनास की जात के बारे में मोहम्मद इकराम चुगताई ने हाइडलबर्ग जाकर तहकीक की और इस सिलसिले में इनका मजमून इकमाल और इमा वैगेनास नुआए वक़्त जुमा मैगजीन मोरखा 9 ता 15 नवंबर 1984 में छप चुका है। इनकी तहकीक के मुताबिक एमा वैगेनास कुछ मुद्दत पांसी या शरर में जर्मन जुबान पढ़ाती रही। पहली जंग अजीम के खात्मे पर हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी के क्लिनिक में बतौर केमिस्ट मुलाजम हुई और 28 बरस तक यही खिदमत अंजाम देती रही। 1947 में बाउम्र 68 साल रिटायर हुई। तमाम उम्र गैर शादीशुदा रही। हाइडलबर्ग में अपनी बहन सूफी वैगे नस्त के साथ रहती थी। 1956 में इन्हीं बुढ़ापे का अलाउंस मिलना शुरू हुआ। बिलआखिर 85 साल की उम्र में 16 अक्टूबर 1964 को वफात पा गई। इकबाल की एमा वैगे नास्त के साथ मरासलत जारी रही, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से कभी ना मिल सके। अब तक दरियाफ्त शुदा खतूत की तादाद 27 है। पहला 16 अक्टूबर 1907 को और आखिरी खत 21 जनवरी 1933 को लिखा गया। 17 खत जर्मन जुबान में है और 10 अंग्रेजी जुबान में। एम्मा वैगेनास्त जर्मन जुबान के अलावा और कोई जुबान ना जानती थी। इन्होंने इकबाल को जो खतूत लिखे वो महफूज नहीं। दोनों ने आपस में तस्वीर और तोहाइफ का तबादला भी किया। इकबाल इन्हीं अपनी तकारीर या कलाम भी भेजते रहते थे और बाज़ औक़ात इनके कलाम का जर्मन तर्जमा भी एमा वैगे नस्त की वसासत से हाइडलबर्ग के अखबारात में छपता था। एमा वैगे नस्त की वफात के चंद बरस बेशतर हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी के किसी पाकिस्तानी तालब इलम का वहाँ के अखबार में मरासला शाया हुआ, जिसमें तहरीर किया गया था कि 1907 में इकबाल इस शहर में चंद माह ठहरे थे, मगर मालूम नहीं कि कहाँ ठहरे थे। ये मरासला एम्मा वैगे नस्त की नज़र से गुजरा और उन्होंने पाकिस्तानी तलबा को अपने साथ जाकर इस मकान की निशानदही कराई। इकबाल के एम्मा वैगे नस्त के खतूत के नाम खतूत की दरियाफ्त के मुतल्लक ये सूरत है कि 1960 में पाकिस्तानी जर्मन फॉर्म दोनों के दरमियान सकाफती तलुकात की एक अंजमन थी। इस जमाने में मुमताज हसन इसके सदर और जर्मन मुस्लिम मोहम्मद अमानुल्ला हाबू बोहम इसके सेक्रेटरी थे। इस अंजमन की कोशिशों से हाइडलबर्ग में एमा वैगे नास्त का सुराख मिला और मुमताज हसन और एमा वैगे नास्त के दरमियान खतो कताबत के नतीजे में एमा वैगे नास्त ने इकबाल की तरफ से अपने नाम वसूल होने वाले खतूत इस शर्त पर फोरम के हवाले कर दिए कि इन्हें पाकिस्तान के किसी ऐसे तारीखी हफाजत खाने या नेशनल आर्काइव में महफूज कर दिया जाए जहाँ इकबाल के हयात व फिक्र पर तहकीक करने वाले इनसे इस्तफादा कर सकें। लेकिन खतूत का ये मजमूआ मुमताज हसन ही के पास रहा, ताकि वो वफात पा गया और अब शायद इनके वर्षा की तहवील में है। बहरहाल मुमताज हसन ने इस मजमूए की एक मुकम्मल फोटो नकल करवा के हाबोम को दे दी और हाबू हम लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में 5 मई 1982 को मुनक्कद होने वाले योम इकबाल के मौके पर अपने मकाले के जरिए पहली मरतबा खतूत के इस मजमूए को मंजर आम पर लाए। इनके मकाले एमा और इकबाल के मुबैन खतो किताबत का उर्दू तर्जमा डॉक्टर सईद अख्तर दुरानी ने किया, जो नवाए वक्त मैगजीन मुर्खा 18 फरवरी 1983 में शाया हो चुका है। हाबू हम फरमाते हैं कि इनकी याद के मुताबिक कुल मिलाकर 40 खतूत और कुछ तस्वीरें थीं, लेकिन मुमकिन है कि इनके कई सफरों में चंद फोटोकॉपियां गुम हो गई हों। वो इकबाल की जर्मन जुबान से शनासाई पर तबसरा करते हुए तहरीर करते हैं कि इकबाल इन खतूत में बार बार इस बात का शिकवा करते हैं कि जर्मन जुबान से बड़े नावाकफ हैं और इसमें वो अपने ख्यालात का हसबे खातर इजहार नहीं कर सकते, बल्कि अपनी टूटी फूटी जर्मन को मकतूब अलिया के लिए गुस्ताखी समझकर इजहार माजरत भी करते हैं। ताहम मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इकबाल ऐसा कहने में जरूरत से ज्यादा इंकसार बरत रहे हैं। मुझे तो इस बात पर तहज्जुब है कि वो इस जुबान में अपने ख्यालात का इजहार किस खूबी के साथ कर सकते हैं। हालांकि इस जुबान की तलीम इन्होंने नहायत ही मुख्तसर अरसे में हासिल की थी। इन खतूत का उर्दू तर्जमा डॉक्टर सईद अख्तर दुरानी ने किया है और वो 2 किस्तों में नवाए वक्त इकबाल नंबर मोरखा 9 नवंबर 1983 और नवाए वक्त मोरखा 22 नवंबर 1983 में शाया हो चुका है। यह खतूत अब इनकी किताब इकबाल यूरोप में शामिल है। लंदन में क्याम के दौरान इकबाल ने इस्लामी दीन व तमद्दन पर लेक्चरों का एक सिलसिला शुरू किया, जिसके मौजूदात थे इस्लामी तसव्वुफ, मुसलमानों का असर तहजीब यूरोप पर, इस्लामी जमहूरियत, इस्लाम और अकल इंसानी वगैरह। ख्वाजा हसन निजामी के नाम इकबाल के एक खत मुहर्रा 10 फरवरी 1908 से जाहिर होता है कि इस वक्त तक इस सिलसिले का एक लेक्चर इकबाल दे चुके हैं और दूसरा लेक्चर इस्लामी तसव्वुफ पर इन्होंने फरवरी के तीसरे हफ्ते में अभी देना था। ये लेक्चर किन किन तारीखों पर लंदन में किसी जगह दिए गए, इसका जवाब वसूख से नहीं दिया जा सकता। गलबन इनमें से एक लेक्चर किंगस्टन हॉल में दिया गया। इकबाल लंदन यूनिवर्सिटी में 6 माह के लिए आर्जी तौर पर अरबी के प्रोफेसर मुकर्रर किए गए। सफा नंबर 261। ये तकर्र लंदन के इसी क्याम के दौरान हुआ जब आर्नल्ड 6 माह के लिए रुख्सत पर गया और इकबाल ने इनके कायम मकाम की हैसियत से तदरीस के फ़राइज़ संभाले। इकबाल ने लंदन के अपने तकरीबन 9 माह के इस क्याम में मुस्लिम तलबा की इज्तमाही सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया। मिर्जा जलालुद्दीन के बयान के मुताबिक इन्होंने अपने क्याम में लंदन के दौरान वहां पैन इस्लामिक सोसाइटी के नाम से एक नीम सियासी अंजुमन कायम कर रखी थी। सर अब्दुल्ला सहरवर्दी, जिसके जनरल सेक्रेटरी, और सर सुल्तान अहमद और मिर्जा जलालुद्दीन दोनों ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। जब इकबाल इंग्लिस्तान पहुंचे तो ये सोसाइटी मौजूद थी। सर अब्दुल कादर बयान करते हैं कि इकबाल जब कैम्ब्रिज से लंदन आते तो बाज़ औक़ात वो दोनों अलमी मजालस में इकट्ठे शरीक होते थे। अब्दुल्ला अनवर बेग तहरीर करते हैं कि लंदन में आने वाले मुस्लिम तलबा के मुआशरती मसाइल हल करने के लिए मुसलमानों की एक अंजुमन हाफज महमूद शेरानी ने कायम कर रखी थी। बाद मुस्लिम तलबा ने इसरार किया कि इस अंजुमन का नाम पैन इस्लामिक सोसाइटी रख दिया जाए, लेकिन दूसरों का इतराज़ था कि इस तरह अंजुमन सियासी रंग अख्तियार कर लेगी। सर अब्दुल्ला सहरवर्दी पैन इस्लामिक नाम के हक में थे, मगर सैयद अमीर अली और आर्नल्ड इस्लामिक सोसाइटी नाम रखना चाहते थे। बिलाखिर इकबाल ने पैन इस्लामिक नाम रखने वालों की हमायत की, चुनाचा सोसाइटी का यही नाम रखा गया। बात दरअसल यह है कि इतिहाद ममालिक इस्लामिया की तहरीक को मुसलमानों ने तो हमेशा इस्लाम या इतिहाद इस्लाम का नाम दिया, मगर यूरोप में इस तहरीक के खिलाफ अवामी राय मुनज़म करने की खातर सियासतदानों या प्रेस ने पैन इस्लामिज्म का नाम दिया। चुनाचा इकबाल या मुस्लिम तलबा पैन इस्लाम इस्तलाह को अपनाने के हक में क्यों कर हो सकते थे। बहरहाल इंग्लिस्तान में ऐसी अंजुमनें अमूमन तलबा को किसी न किसी बहाने इकट्ठा करने के लिए कायम की जाती थी। वो या तो मजहबी तकरीबात मनाने का अहतमाम करते या इनके जरिए किसी नामवर शख्सियत को मधु करके इसके लेक्चर का इंतजाम किया जाता था। मुमकिन है इकबाल ने इस अंजुमन की कार्रवाइयों में लंदन में मुकीम दीगर मुस्लिम तलबा से मिलने की खातर हिस्सा लिया हो। 1905 में हिंदुस्तान में वायसराय की तब्दीली हुई, लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मेंटलो ने ली और इंग्लिस्तान में इकतदार लिबरल पार्टी के हाथों में आ गया और कांग्रेस के जरिए मजीद दस्तूरी मराहत के लिए नई आइनी असलाहत के नफाज का अमकान पैदा हुआ। इस जमन में लॉर्ड मेंटो और जॉन मोरले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बुराई हिंदुस्तान ने भी ऐलान किए। ये सूरत हाल सर सैयद के हमीय मोहसन अल मुल्क और वकार अल मुल्क के लिए तशवीश का बाइस थी, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में इंतखाबात का असूल राइज कर दिया जाता तो हिंदू अक्सरियत मुसलमानों पर मुसल्लत हो जाती। सियासी एतबार से हिंदू अक्सरियत के मुकाबले में मुस्लिम कायदीन का रवैया मुदाफाना था, लिहाजा इनके नज़दीक मुस्लिम अकलीत का तहफ़ इसी सूरत मुमकिन था कि इंतखाबात का नफाज जुदागाना नियाबत के असूल पर किया जाए। इसी सिलसिले में बिलाकर 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान की ज़ेर क़यादत मुस्लिम कायदीन का एक वफद लॉर्ड मेंटो से भी शिमले में मिला, जिसने यकीन दिलाया कि मुसलमानों के हकूक का तहफ़ इनके मुतालबात की रोशनी में किया जाएगा। इस वफद की कामयाबी ने मुसलमानों की सियासी तंजीम के क्याम के लिए राह हमवार कर दी। दिसंबर 1906 में मुस्लिम कायदीन ढाके में इकट्ठे हुए और आगा खान की ज़ेर सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मर्ज़े वजूद में आई। वकार उल मुल्क सेक्रेटरी और मोहसन उल मुल्क ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए। मोरले मिंटो दस्तूरी असलाहत का नफाज हिंदुस्तान में इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के जरिए हुआ, जिसके तहत मुसलमानों का मुतालबा यानी इंतखाबात में जुदागाना नियाबत का असूल आइनी तौर पर तस्लीम कर लिया गया। सफा नंबर 263। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ब्रिटिश कमेटी का इफ्तिताह लंदन में भी मई 1908 में किया गया, जब किंगस्टन हॉल में सैयद अमीर अली की जेर सदारत लंदन में मुकीम मुसलमानों का एक इजलास हुआ। सैयद अमीर अली कमेटी के सदर चुने गए और इकबाल को मजलिस आमला का रुकन मंतखब किया गया। कवायद ज़वाबत वाज़े करने के लिए जो सब कमेटी मुकर्रर हुई, इसमें भी सैयद अमीर अली, मेजर सैयद हसन बेलग्रामी और इकबाल शामिल थे। लंदन में इकबाल का ममूल था कि वो शहर से अपनी रहायशगाह तक पहुंचने के लिए रेल इस्तेमाल करते थे। इस किस्म के एक सफर के मुतल्लक वो बयान करते हैं, इंग्लिस्तान में तालिबे इल्मी के ज़माने में मुझे हर रोज़ शाम के वक़्त अपनी क़यामगाह की तरफ रेलगाड़ी में सफ़र करना पड़ता था। ये रेलगाड़ी एक जगह ख़त्म होती थी और सब मुसाफरों को सामने वाले प्लेटफार्म पर दूसरी गाड़ी में सवार होना पड़ता था। गाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती तो गार्ड बुलंद आवाज़ से पुकारता, ऑल चेंज, यानी सब बदलो। एक रोज़ मैं हसबे ममूल गाड़ी में बैठा था कि मेरे इर्द गिर्द अखबार बैन मुसाफर आपस में बुद्ध मज़हब के मुतल्लिक बातें करने लगे। एक साहब ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये साहब गलबन एशियाई हैं, इनसे बुद्ध मजहब के मुतल्लिक पूछा जाना चाहिए। चुनाचा मुझसे पूछा गया, मैंने कहा अभी जवाब देता हूँ, ये कहकर मैं चुप रहा। चंद मिनटों के बाद इन्होंने मुझसे दोबारा पूछा, मैंने फिर कहा अभी जवाब देता हूँ। वो कहने लगे शायद आप जवाब सोच रहे हैं, मैंने कहा हाँ। इस दौरान मैं स्टेशन आ गया, गार्ड ऑल चेंज पुकारने लगा, मैंने कहा बस यही बुद्ध मजहब है। इकबाल की यूरोप में तालीम और रहायश के अखराजात ज्यादातर इनके भाई शेख अता मोहम्मद बर्दाश्त करते थे। लंदन यूनिवर्सिटी में 6 माह के लिए अरबी की प्रोफेसरी के सबब इनकी माली हालत निस्बतन बेहतर हो गई थी, लेकिन इस तकर्र से बेशतर वो भाई ही से पैसे मंगवाते थे। इस जमन में इकबाल बयान करते हैं, जब मैं विलायत गया तो अपना कुछ रुपया मेरे पास मौजूद था, लेकिन ज्यादातर रकम मेरे भाई साहब ने मुझे दी थी। विलायत के क्याम के दौरान भी वक्तन फवक्तन मुझको रकम भेजते रहते थे। जब मैंने कैम्ब्रिज से बीए कर लिया तो उन्होंने लिखा कि अब बैरिस्ट्री का कोर्स पूरा करके वापस आ जाओ, लेकिन मेरा इरादा पीएचडी करने की डिग्री लेने का था, इसलिए मैंने जवाब दिया कि कुछ रकम भेजिए ताकि जर्मनी जाकर डॉक्टरी की सनद ले लूं। उन्होंने मुझे मतलूबा रकम भेज दी। इन्हीं दिनों में वो एक रोज सियालकोट में अपने पुरतकल्लफ दोस्तों की सोबत में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, क्यों शेख साहब, सुना है इकबाल ने एक और डिग्री ली है। भाई साहब ने जवाब दिया, भाई क्या बताऊं, अभी तो वो डिग्रियों पर डिग्री लिए जा रहा है, खुदा जाने इन डिग्रियों का इजरा कब होगा। इस दौर में शायरी के मैदान में इकबाल चंद तकैरात से गुजरे। शुरू में इन्होंने ये महसूस किया कि रवायती शायरी के जरिए मशरकी अफकार के इजहार को वक्त की जरूरत ज़ियाद के मुताबिक ढालना और इस तरह की शायरी को बामकसद बनाना मुमकिन नहीं। चुनाचा इस ख्याल के पेशे नज़र उन्होंने शायरी तर्क कर देने का इरादा कर लिया और गलबन 1906 के वस्त में इस बात का जिक्र सर अब्दुल कादर से भी किया। सर अब्दुल कादर ने इन्हें समझाया कि इनके कलाम में वो तसीर है जिससे इनकी दरमानदा कौम और बदनसीब मुल्क के मराइज के इलाज का अमकान है, इसलिए ऐसी मुफीद खुदादाद कुव्वत को मुअत्तल कर देना मुनासिब नहीं। बिलाखिर दोनों में ये करार पाया कि आर्नल्ड की राय पर फैसला छोड़ दिया जाए। सफा नंबर 265। आर्नल्ड ने सर अब्दुल कादर से इतफाक किया और फैसला यही हुआ कि इकबाल के लिए शायरी छोड़ना जायज नहीं। दूसरा तगैयर, सर अब्दुल कादर के बयान के मुताबिक एक छोटे से आगाज से बड़े अंजाम तक पहुंचा। सर अब्दुल कादर लिखते हैं, बज़ाहिर सब जिस छोटे से वाक्य से इनकी फारसी गोई की इब्तदा हुई वो ये है कि एक मरतबा वो अपने एक दोस्त के यहाँ मदऊ थे, जहाँ इनसे फारसी अशार सुनाने की फरमाइश हुई और पूछा गया कि वो फारसी में भी शेर कहते हैं या नहीं। इन्हें इतराफ़ करना पड़ा कि इन्होंने सिवाय एक आध शेर के फारसी में कहने की कोशिश नहीं की, मगर कुछ ऐसा वक़्त था और इस फरमाइश ने ऐसी तहरीक इनके दिल में पैदा की कि दावत से वापस आकर बिस्तर पर लेटते हुए बाकी वक्त वो शायद फारसी अशार कहते रहे और सुबह उठते ही जो मुझसे मिले तो दो ताज़ा गज़लें फारसी में तैयार थीं जो उन्होंने ज़ुबानी मुझे सुनाई। इन गज़लों के कहने से इन्हीं अपनी फारसी गोई की कुव्वत का हाल मालूम हुआ, जिसका उन्होंने पहले इस तरह इम्तिहान नहीं किया था। इसके बाद वलायत से वापस आने पर गो कभी कभी उर्दू की नज़में भी कहते थे, मगर तबीयत का रुख फारसी की तरफ हो गया। अंग्रेजी अदब से शनासाई के सबब इकबाल शेक्सपियर के अलावा मिल्टन वर्ड्स वर्थ शेले बायरन ब्राउनिंग मैथ्यू आर्नल्ड टेनिसन एमर्सन ग्रे लॉन्ग फेलो वगैरह से मुतासर थे। हो सकता है फ्रांसीसी अदब के कुछ शहपारे भी इनकी नजरों में से गुजरे हों, लेकिन जर्मन जबान से दिलचस्पी के बायस वो जर्मन अदब से मुतारफ हुए और हाइडलबर्ग में क्याम के दौरान उन्होंने इसका खसूसी तौर पर मुतालिया किया। इकबाल को जर्मन अदब से इस बिना पर वाबस्तगी पैदा हुई कि इसमें मशरकी तहरीक यूरोप के दीगर ममालक के अदब की निस्बत ज्यादा दिलकश और मौसर थी। जर्मन अदब में मशरकी तहरीक का आगाज हेरडर्ट की तसनीफ गुलाए चीदा इज कलाम शायर इन मशरक से हुआ, जिसमें हाफज सादी रूमी और भरोतरी हरी के शायर और हितोपदेश और भगवत गीता की हकायात का आजाद तर्जमा था। बाद में गोटे इस तरीक की तरफ मुतवजा हुआ। गोटे फारसी अरबी और संस्कृत अदब से मुतासर था। इसकी खालिस्तन मगरबी तसनीफ फाउस्ट के इब्तदाइये में कालिदास की शंकुतला का असर नुमाया है। दीवान हाफ़िज़ के मुताले से गोटे को मगरबी दीवान लिखने की तहरीक हुई। वो हाफ़िज़ के अलावा रूमी सादी फरीदुद्दीन अतार और फरदोसी के कलाम नीज हजूर अकरम की हयात तैयबा और कुरान मजीद की तलीमात से भी मुतासर था। इनके दीवान में फारसी तशबीहात और अस्तारात इस कसरत से इस्तेमाल हुए हैं कि अशार में मशरकी फजा पैदा हो गई है। मगरबी मशरकी दीवान की अशात से जर्मन अदब में मशरकी तहरीक मजीक मुस्तहकम हो गई। बाद में रोकर्ट प्लानट बोर्डन अशी स्ट्रीट शीलर और हाइने ने इसे कमाल तक पहुंचा दिया। और हाफज के तत्बा में अशार कहना जर्मन अदब में बजाय खुद एक तहरीक बन गया। यूं मशरक की रूह जर्मन अदब में दाखिल हुई। इकबाल जर्मन शेर शेबहसियत मजमुई मुतासर थे, मगर गोटे का असर इन पर बहुत गहरा और देर पा साबित हुआ। इकबाल ने इस दौर में कुल 24 नज़में और 7 गजलें कहीं, जो बांगे दरा के हिस्सा दोम की जीनत हैं। इन नज़मों में से बास में तो इससे कैम्ब्रिज या हाइडलबर्ग में क्याम के दौरान लिखी गई मनाजर फितरत की अक्कासी है। हुस्नो इश्क और इश्क के हरजाई में इश्क के मजाजी की झलक है। वह नस्वानी हुसन से मुतासर होकर या यूरोप के खसूसी माहौल में अपनी बेवफाई को वफा से बेहतर करार देते हुए कही गई है। वतनी कौमियत का जज्बा गो यूरोप में भी मौजूद था, लेकिन रफ्ता रफ्ता मिल्लत इस्लामिया या इसके तहत आलमी अखुवत का जज्बा फौकियत हासिल कर रहा था। फलसफा और तसव्वुफ में भी अभी तक इकबाल के जहन पर वहदतुल वजूद का गलबा था। गो कलब इससे मुतमिन ना रहा था। इन नज़मों में तीन तो किसी न किसी तरह के प्याम से मुतल्लक हैं। मसलन प्यामे तलबा अलीगढ़ से नाम, प्यामे इश्क और प्यामे इससे जाहिर होता है कि इकबाल में ये एहसास फरोग पा रहा था कि बामकसद शायरी को पैगंबरी का जुज होना चाहिए। एक गजल और एक नज़म तो खास तौर पर तवज्जो के काबिल है। गजल मार्च 1907 में लिखी गई और मगरब व मशरक के लिए पेशन गोइयों से लबरेज है। नज़म अब्दुल कादर के नाम है, जिसमें कौम व मुल्क के अंदाज़े फिक्र में इनकलाब लाने की खातर एक तरह की दावत शोला नवाई दी गई है। सकीला मराजत वतन के वक़्त समुद्री सफर के दौरान कही गई, जब इनका जहाज जजीरा सिसली के करीब से गुजर रहा था। क़याम यूरोप के दौरान इकबाल में जो सबसे बड़ा इनकलाब आया वो इनका वतनी कौमियत और फलसफे व तसव्वुफ से मुतनफ़र होकर जहनी और कलबी तौर पर इस्लामी तलीमात की तरफ रुजू करना था। ये इनकलाब इनमें क्यों कर और कब वकूअ पज़ीर हुआ, इसका जवाब मुख्तलिफ मराहिल के तारीख व अरतईन से देना तो मुमकिन नहीं। ताहम इस बारे में इकबाल की बाज़ तहरीरों और अशार में अशारे ज़रूर मौजूद हैं। वैसे इंग्लिस्तान में इन्हीं करीब से जानने वालों की तहरीरें भी हमारी कोई ख़ास रहबरी नहीं करती। मैक टैगरट के बयान के मुताबिक इकबाल कैम्ब्रिज में क्याम के दौरान वहदत अल वजूद के कायल थे। अतिया फयाजी ने लंदन में मुलाकातों के दौरान इन्हीं हाफज का दिल दादा पाया। सर अब्दुल कादर सिर्फ सरसरी तौर पर जिक्र करते हैं कि इकबाल को जब मगरबी मुआशरत के नकायस करीब से देखने का मौका मिला तो तहजीब यूरोप की जर परस्ती और कम जर्फी ने इनकी तबीयत को मुतनफर कर दिया। सफा नंबर 268। इकबाल अपने दिलो दिमाग की सरगजश्त लिखना चाहते थे, इस बात का जिक्र इन्होंने अपने कई खतूत में किया है। सैयद सुलेमान नदवी के नाम अपने एक खत मुहर्रा 10 अक्टूबर 1919 में लिखते हैं कि मैं अपने दिलो दिमाग की सरगजश्त लिखना चाहता हूं और ये सरगजश्त कलाम पर रोशनी डालने के लिए नहायत जरूरी है। इशरत रहमानी के नाम खत मुहर्रा 1 27 अक्टूबर 1919 में रकम तराज है कि मेरी जिंदगी में कोई गैर मामूली वाकया नहीं जो औरों के लिए सबक आमोज हो सके। अलबत्ता मेरे ख्यालात का तदरीजी इनकलाब सबक आमोज हो सकता है, अगर फुर्सत मिली तो इसे कलम बंद करूंगा। और ये कि फिलहाल इसका वजूद महज अजाइम की फहरिस्त में है। मुमताज हसन से एक मुलाकात में फरमाया कि जब मैं कैम्ब्रिज में था तो फलसफे के साथ साथ इस गरज से माशियात का मुतालिया किया करता था और इस मौजू पर लेक्चर सुना करता था कि मुसलसल फलसफा पढ़ने और सोचने से जहन में यक तरफा पैदापन पैदा ना हो और तबीयत का तवाजन कायम रहे। वहीद अहमद मदीर नकीब बदायूं को अपने खत मुहर्रा 7 सितंबर 1921 में तहरीर करते हैं, इस जमाने में सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम और इस्लामियों का नस्ली इम्तियाज और मुल्की कौमियत का ख्याल है। 15-13 लिख कर काट दिया और इसे 15 बनाया। बरस हुए जब मैंने पहले पहल इसका एहसास किया, इस वक्त मैं यूरोप में था और इस एहसास ने मेरे ख्यालात में इनकलाब अजीम पैदा कर दिया। हकीकत यह है कि यूरोप की आबो हवा ने मुझे मुसलमान कर दिया है। ये एक तवील दास्तान है, कभी फुर्सत हुई तो अपने कलब की तमाम सरगजिश्त कलम बंद करूंगा जिससे मुझे यकीन है कि बहुत लोगों को फायदा होगा। इस दिन से जब ये एहसास मुझे हुआ है आज तक बराबर अपनी तहरीरों में यही ख्याल मेरा मतमा नजर रहा है। मालूम नहीं मेरी तहरीरों ने और लोगों पर असर किया है या नहीं, लेकिन ये बात यकीनी है कि इस ख्याल ने मेरी जिंदगी पर हैरत अंगेज असर किया है। इकबाल में मगरब जदगी यूरोप जाने से कबल थी, ना क्याम यूरोप के दौरान आई। इनकी नज़र मुहक्काना थी, इसलिए इनमें मगरब की कोराना तकलीद का शुबा तक ना पैदा हुआ। इन्होंने यूरोप के जाहरी हुसन का तमाशा जरूर किया, लेकिन साथ ही इसके बातन पर भी गहरी निगाह डाली। अकली अलूम साइंस और टेक्नोलॉजी की करिश्मा साजियां भी देखी, मगर साथ ही मुशाहदा किया कि यूरोपी इल्म हुनर का कम तन्हाए नजर तन है मन नहीं। यानी यूरोप में दिमाग की तरबियत तो हो जाती है लेकिन दिल व तशन्ना रह जाता है। यूरोप की जेर की बुनियाद मादा परस्ती पर इस्तवार की गई है, इसका निसबुलैन मुफाद अंदरूजी है और वो इस जज्बा इश्क से महरूम है जो रूह के अंदर हकीकी मायनों में अतराम आदमियत या इंसान दोस्ती का खलाक है और इरतकाए हयात का जामन है। इसलिए इनकी मशरक़ की बसीरत ने भांप लिया कि यूरोप की तहजीब में खराबी की सूरत मजमर है और इसकी तजल्ली आर्जी नवीयत की है। यूरोप में कलीसा और रियासत के दरमियान इकतदार की कशमकश में कलीसा की शिकस्त के बाद 18वीं सदी में मजहब फर्द का जाती मामला समझे जाने लगा और कौमों की तंजीम एक मुश्तरक रूहानी मतमा नजर पर इस्तवार होने की बजाय नस्ल रंग जुबान और इलाके की बुनियाद पर कायम होना शुरू हो गई थी। अकली अलूम साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के सबाब इन कौमों में वहमी रकावटें पैदा हुई और मुफाद परस्ती जर अंदोजी और कमजोरों के एहतसाल के लिए एक दूसरों से सबकत ले जाने की खातिर इनमें मुकाबला होने लगा। इस दौड़ में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि 19वीं सदी के आखिर तक एशिया अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के बेशतर मुल्कों के बशिंदे बरतानवी फ्रांसीसी रूसी हस्पानवी और वलंदरेजी अस्तमार के गुलाम बन गए। हालत ये थी कि बेल्जियम जैसा छोटा मुल्क अपने से कई गुना बड़े मुल्क कांगो पर काबज था। पस जज्बा वातनियत और साइंसी अलूम की तरक्की ने इन कौमों में जो कौम कुवतें पैदा कर दी थी इनके जरिए कमजोरों को लूटने और मगलूब करने का सिलसिला जारी रहा। रूस ने जार पीटर अव्वल के अहद में 1725 से मगरबी तरीके अपनाने शुरू किए। 19वीं सदी में जार स्कंदर दोम के अहद हुकूमत में वस्ताई एशिया की मुस्लिम रियासतों को ताराज करके नई सल्तनत रूस का हिस्सा बना लिया। फिर रूसी हुक्मरानों की हरीसाना निगाहें मशरकी यूरोप में उस्मानी तुर्किया के इलाकों पर मुर्तकज हुई। इन्होंने एक तरफ तो सलाह दी के कौमी इतिहाद की तहरीक की हमायत करके सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत के दरमियान चपलकश की हौसला अफजाई की, क्योंकि इस खत्ते में जंग की सूरत में रूस की नीयत दर्रा दानियाल पर कब्जा करने की थी, और दूसरी तरफ उन्होंने बलकानी रियासतों में मुख्तलिफ कौमियतों को उस्मानी तुर्कों के खिलाफ बगावत पर उकसाया। नतीजा ये हुआ कि 19वीं सदी के आखिर तक तुर्कों को मशरकी यूरोप के बेशतर इलाकों से निकाल दिया गया। इकबाल की इंग्लिस्तान रवानगी के वक़्त 1905 में जापानियों और रूसियों की जंग में रूसियों ने शिकस्त खाई। ये जंग भी इसी गर्ज के लिए लड़ी गई थी कि हर मुल्क शुमाल मशरकी एशिया के साहल कोरिया और शुमाली समुद्रों का कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहता था। ये पहली जंग थी जो एक एशियाई मुल्क ने किसी मगरबी ताकत के खिलाफ जदीद हथियारों से लैस होकर लड़ी। जापान ने संत और हराफत के मैदान में मगरबी ममालक का मुकाबला करने के लिए 1850 से मगरबी तरीके अपनाए। चंद ही सालों में जापानियों ने तजारत में बहुत तरक्की की और इस कदर ताकतवर हो गए कि 1895 में चीन को शिकस्त देकर फार्मूसा और कुछ दूसरे इलाके छीन लिए। इसी दौर में रूसी इस्तेमार का रुख मशरक बाईद की तरफ भी था। जार सकंदर दोम ने चीन के शुमाल मगरबी इलाकों और जापान के जजीरे सहालन के आधे हिस्से पर कब्जा कर रखा था। बिलाकर रूसी और जापानी इस्तेमार एक दूसरे से नबर आजमा हुए। जापान ने मशरक बाईद में रूस का बहरी बेड़ा तबाह कर दिया और इन्हीं हर महाज पर शिकस्त दी। इस जंग में बेशुमार रूसी मारे गए और जापान ने न सिर्फ अपने इलाके वापस ले लिए बल्कि ममलकत रूस के कुछ मशरकी हिस्सों पर भी इसकी बरतरी कायम हो गई। यूरोप में इटली और जर्मनी इस्तेमार की दौड़ में पीछे रह गए थे, क्योंकि अतालवी और अलमानवी कौमें अपनी सरजमीन में छोटी छोटी रियासतों में बटी हुई और मुंतशिर थीं। फ्रांसीसी बरतानवी या यूरोप की दीगर मुतहद अकवाम की अपने अपने मफादात के तहफ्फुज की खातर कोशिश ये थी कि अतालवी और अलमानवी कौमें मुतहद ना हों, इनके इन इंतशार की कफियत मुस्तकिल तौर पर कायम रखी जाए ताकि इन्हीं एशिया व अफ्रीका की मगलगूब कौमों पर तसल्लत जमाने इस्तेहसाल में शरीक होने या इसके कारोबार में अपने हिस्से का मुतालबा करने से बाज रखा जा सके। बहरहाल अतालवी कौम का इतिहाद माजानी के हाथों वर्जे मौजूद में आया। माजनी जिनेवा का एक वकील था। इसने 1831 में यंग इटली के नाम से एक खुफिया इनकलाबी सोसाइटी कायम की, जिसका मकसद एक मुश्तरक दस्तूर के तहत इटली की छोटी छोटी रियासतों का इलहाक करके अतालवी कौम को मुतहद करना था। इटली में कौमी इतिहाद की तारीख 1848 से शुरू हुई। 1849 में माजनी ने साफी और अर्मिनली की मदद से रोम की रिपब्लिक की बुनियाद रखी, मगर ये कोशिश कामयाब ना हो सकी और माजनी को रोम छोड़ना पड़ा। बाद में इटली के बड़े शहरों में माजनी की जेरे हदायत कौमी इतिहाद के लिए कामयाब मुजाहरे होने लगे। इस मरला पर सफा नंबर 272 गैरिबाल्दी माजनी की मदद को आ पहुंचा। इटली का शुमाली हिस्सा ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। गैरिबाल्दी ने ऑस्ट्रियों के खिलाफ अतालवियों की बगावत में हिस्सा लिया और कई महमें सर की। इसने फ्रांसीसियों को रूम में दाखिल होने से बाज रखा और सिसली पर कब्जा काबज होकर नेपल्स को फतह किया। आखिरकार माजनी और गैरिबाल्दी की कोशिशों से इटली का कौमी इतिहाद शाह वेक्टर एमिनोल दोम के तहत 19वीं सदी के आखिर में कायम हुआ और इटली ने भी इस्तेमार की दौड़ में शरीक होकर मशरकी अफ्रीका के इलाकों एरिटेरिया और सोमालिया पर कब्जा कर लिया। अलमानवियों की मुंतशिर कौम को मुतहद करने या जर्मनी के इतिहाद को वजूद में लाने का सेहरा बिस्मार्क के सर पर है। जर्मनी की जुग्राफियाई हदूद के अंदर जर्मनों ही की 40 छोटी छोटी रियासतें कायम थीं। इन सब रियासतों के बशिंदों में वतनियत के جذبے کے فروغ کے سبب متحد ہونے کی خواہش تو موجود تھی، لیکن ان کے آپس میں الحاق کی کوئی قابل قبول صورت نہ بنتی تھی۔ بسمارک اس نتیجے پر پہنچا کہ جرمن قوم کا اتحاد طاقت کے ذریعے ہی سے وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ اسے پرشیا کے شاہ ولیم نے اپنا وزیر اعظم مقرر کیا اور بسمارک پرشین فوجوں کی تنظیم میں مصروف ہو گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ فوج کی طاقت سے وہ جنوبی جرمن ریاستوں کی قیادت آسٹریا سے چھین کر کل جرمنی کا اتحاد پرشیا کی قیادت میں قائم کرے گا۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر اس نے پہلے تو ڈنمارک کے خلاف جنگ میں پرشیا کو آسٹریا کا حلیف بنایا، پھر ڈنمارک کی شکست کے بعد بہتر علاقے پرشیا کے لیے رکھ لیے اور بڑا علاقہ آسٹریا کو دے دیا۔ اس پر آسٹریا نے پرشیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، مگر ان جنگ میں پرشیا کی فوری کامیابی کے باعث شمالی جرمن ریاستوں کا اتحاد پرشیا کی زیر قیادت قائم ہو گیا۔ اب بسمارک کے پیش نظر کی نظر جنوبی جرمن ریاستوں کو اتحاد میں شامل کرنے کا مسئلہ تھا، صفحہ نمبر 273، اور یہ اسی صورت ممکن تھا کہ کوئی غیر ملکی طاقت پرشیا پر حملہ کر دے۔ چنانچہ بسمارک اس موقع کی تاک میں رہا، یہ موقع اسے 1870 میں ملا۔ اسپانیہ کا خالی تخت لیوپولڈ کو دیا جانا تھا۔ لیوپولڈ پرشیا کے شاہ ولیم کا رشتہ دار تھا۔ فرانس کے شاہ لوئی نیپولین سوم نے مطالبہ کیا کہ شاہ ولیم لیوپولڈ کو اسپانیہ کا تخت قبول کرنے کی اجازت نہ دے، لیکن شاہ ولیم نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اور اس ضمن میں فرانسیسی سفیر کے ساتھ اپنی گفتگو سے بسمارک کو مطلع کیا۔ بسمارک نے اس گفتگو کی اشاعت اخباروں میں کچھ ایسے انداز میں کرائی کہ جرمنوں کو محسوس ہوا کہ ان کے شاہ کی ہتک ہوئی ہے، اور فرانسیسیوں کو گمان ہوا کہ ان کے سفیر کی تذلیل کی گئی ہے۔ نتیجہ وہی نکلا جو بسمارک چاہتا تھا۔ فرانس نے پرشیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، کیونکہ جنوبی جرمن ریاستوں اپنے معاہدوں کے تحت پرشیا کی حمایت میں نکل آئیں، اور فرانس کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ 1871 میں آسٹریا کے علاوہ ساری جنوبی جرمن ریاستوں کا الحاق بھی پرشیا کی زیر قیادت شمالی ریاستوں سے ہو گیا، اور شاہ ولیم متحد جرمن سلطنت کا قیصر یا شہنشاہ کہلایا۔ مزید 20 سال کی مدت میں بسمارک نے متحد جرمنی کی کایا پلٹ کر رکھ دیا، اور کاشتکاروں کی قوم کو ایک مضبوط صنعتی قوم میں بدل دیا۔ جرمنی نے عقلی علوم، سائنس و ٹیکنالوجی، صنعت و حرافت اور تجارت میں بے حد ترقی کی، یہاں تک کہ جرمن قوم میں ایک مخصوص قسم کا قومی تکبر فروغ پانے لگا۔ وہ سمجھنے لگے کہ جرمن کلچر دنیا میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور دنیا بھر کے اقوام محض رشک یا حسد کی بنا پر ان کی دشمن ہے۔ 1888 میں قیصر ولیم دوم نے جرمن استعمار کی بنیادیں مضبوط کرنا شروع کیں، وہ جنوبی افریقہ کے کئی علاقے ہتھیانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر تجارت کے میدان میں انگریزی قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے بحری بیڑا بنایا اور ایسی فوج تیار کی جس کی نظیر یورپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ صفحہ نمبر 274، روس اور یورپی اقوام کا استعمار تو روز بروز روبہ ترقی کر تھا، لیکن عثمانی ترکیہ کا استعمار روبہ زوال تنزل تھا۔ عثمانی ترکیہ میں مغربی طریقے اپنانے کی تحریک 1774 سے شروع ہوئی، اور 1839 کے بعد سلطان سلیم سوم اور سلطان محمود دوم کے ادوار میں تنظیمات کی صورت میں سلطنت کے نظم و نسق کو بہتر بنانے کی کوششیں کی گئیں۔ رشید پاشا، علی پاشا اور مدد پاشا ایسے مسحلین کی خواہش تھی کہ عثمانی ترکیہ کو ایک جدید ریاست میں بدل دیا جائے، جس میں ہر شہری کو مساوی حقوق حاصل ہوں اور جمہوری طرز کی آئینی بادشاہت کا قیام عمل میں لایا جائے، مگر سلطان کی مطلق انانیت قدم قدم پر حائل تھی۔ 1876 میں سلطان عبدالحمید نے اتحاد اسلام کی تحریک کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہا، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ اسی دور میں ترک مشرقی یورپ کے بیشتر علاقوں سے نکال دیے گئے، اور عثمانی ترکیہ کو یورپ کے مرد بیمار کا نام دیا گیا۔ ترک دور استبداد میں سے گزرے، آخرکار 1908 میں ینگ ترک تنظیم کا انقلاب کامیاب رہا، اور 1909 میں سلطان عبدالحمید کو مزدور کر دیا گیا۔ بعد میں نوجوان तुर्कों ने अनवर पाशा की क्यादत में अरबों और दीगर ममालक के मुसलमानों की हमायत हासिल करने की खातर नारा तो इतिहाद इस्लाम का बुलंद किया, लेकिन इन्होंने जर्मन कौमियतों के इतिहाद की तरह तुर्क कौमियतों के इतिहाद पान तो रैन नयन इज़म को वजूद में लाने की कोशिशें शुरू कर दी। अनवर पाशा जर्मनी से बहुत मुतासर था, इसलिए इसकी कोशिशों से जर्मनी और उस्मानी तुर्क एक दूसरे के करीब आ गए। मराको उस्मानी सल्तनत का हिस्सा था, फ्रांस इस पर कब्जा करना चाहता था, मगर कैसर विलियम दोम ने मुतालबा किया कि मराको में जर्मन मफादात के तहफ्फुज का ख्याल रखा जाए। इस तरह कैसर विलियम दोम ने बर्लिन को बगदाद से मिलाने के लिए जर्मन रेलवे लाइन की तमीर के मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया।